एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार,
मैं हूं आपका मेजबान।
और मैं हूं आपकी सह मेजबान।
और आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो अब सिर्फ किताबों या फिल्मों में नहीं बल्कि हमारी असल जिंदगी का हिस्सा बन रहा है।
हाँ, रोबोट एथिक्स, मतलब रोबोट से जुड़े नैतिक सवाल।
बिल्कुल, आजकल देखिए घरों में वो गोल गोल घूमने वाले वैक्यूम क्लीनर, फैक्ट्रियों में काम करते रोबोटिक हाथ,
ड्रोन तो है ही, और अब तो अस्पतालों में, यहाँ तक कि बुजुर्गों की देखभाल में भी रोबोट्स मदद कर रहे हैं। ये अब कहीं दूर की बात नहीं रही।
सही कहा, और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी हो गया है कि भाई इन मशीनों के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो, समाज पर इनका क्या असर पड़ रहा है, पड़ेगा। तो आज हम मार्क कोकलबर्ग के काम और उनकी किताबों के जरिए इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे।
हमारा मकसद यही है कि उनके विचारों से वो जरूरी बातें, वो अंतर्दृष्टि निकालें जो हमें इन नई चुनौतियों को समझने में मदद करें।
तो शुरू करते हैं लेखक के परिचय से।
जरूर, मार्क कोकलबर्ग, ये वियना विश्वविद्यालय में मीडिया और प्रौद्योगिकी के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं।
और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने शुरू में इशारा किया, कि ये कोई इंजीनियर या कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं है।
हाँ, और मेरे ख्याल से यही चीज उनके नजरिए को बहुत खास बनाती है। वो एक दार्शनिक है।
तो वो तकनीक के कैसे से ज्यादा उसके क्यों और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा वाले पहलुओं पर सोचते हैं।
बिल्कुल, उनका फोकस इस पर रहता है कि टेक्नोलॉजी हमें, हमारे समाज को, हमारे रिश्तों को कैसे बदल रही है। वो सिर्फ मशीन को नहीं देखते बल्कि उसके पीछे के इंसानी मूल्यों और सामाजिक असर को देखते हैं।
मतलब वो तकनीक और दर्शन के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं।
हाँ, कह सकते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि तकनीक मानव अस्तित्व, नैतिकता और सामाजिक संबंधों को कैसे नया आकार दे रही है। वो सिर्फ तकनीकी या कानूनी नजरिए से आगे जाते हैं।
और उन्होंने रोबोट बनाने वालों और पॉलिसी बनाने वालों के साथ भी काम किया है ना?
हाँ, काफी काम किया है, ताकि नैतिक सोच जो है वो तकनीक के विकास की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा बन सके, शुरू से ही।
इसीलिए वो रोबोट एथिक जैसे जटिल और थोड़े नए विषय पर बात करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज है। उनका काम हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ मशीन ना देखें बल्कि उस समाज को देखें जो उसे बना रहा है और इस्तेमाल कर रहा है।
अब अगर कोकेबर्ग के काम के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वो काफी साफ है। वो चाहते हैं कि हम सब लोग, छात्र हों, पॉलिसी मेकर, इंजीनियर या कोई भी आम इंसान जो इस बारे में जानना चाहता है,
वो रोबोट की इस बढ़ती दुनिया के बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचें।
हाँ, वो हमें सोचने के लिए कुछ दार्शनिक औजार, कुछ सोचने के तरीके देना चाहते हैं।
और उनका जो मूल तर्क है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो कहते हैं कि रोबोट एथिक्स असल में रोबोट के बारे में है ही नहीं।
है ना चौंकाने वाली बात, ये तो एक आईना है।
आईना? कैसा आईना?
जिसमें हम खुद को देखते हैं, हमारे अपने मानवीय मूल्य, हमारी सामाजिक संरचनाएं, इंसान होने का मतलब क्या है, ये सब रोबोट एथिक्स के सवालों में झलकता है।
अच्छा, तो असली सवाल ये नहीं कि रोबोट को नैतिक कैसे बनाए?
नहीं, असली सवाल ये है कि हम इंसान रोबोट को कैसे डिजाइन करें, कैसे इस्तेमाल करें और उनके साथ कैसा बर्ताव करें, ताकि एक अच्छा, एक न्यायपूर्ण समाज बन सके। फोकस हम पर है, मशीन पर नहीं।
ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है।
बिल्कुल,
मतलब वो जो डरावनी साइंस फिक्शन वाली बातें हैं कि रोबोट दुनिया पर कब्जा कर लेंगे।
हाँ, कोकलबर्ग उससे ध्यान हटाकर उन असली नैतिक सवालों पर लाते हैं जो आज हमारे सामने है, जो वाकई में हो रहा है।
जैसे?
जैसे नौकरियां जाने का डर, एल्गोरिदम में इंसानी भेदभाव का आ जाना, हमारी प्राइवेसी पर खतरा,
और वो जिम्मेदारी का अंतर वाली बात।
हाँ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर कोई ऑटोमेटिक सिस्टम, मान लीजिए सेल्फ ड्राइविंग कार, कोई गलती करती है तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रोग्रामर, मालिक, कंपनी या खुद कार?
ये तो सच में एक पहेली है।
तो आज की चर्चा में हम इन्हीं असली दुनिया की नैतिक उलझनों को थोड़ा और खोल कर देखेंगे।
हाँ, सतही नियमों से आगे बढ़कर कोकलबर्ग के मुख्य विचारों को समझेंगे। देखेंगे कि ये युद्ध, काम, देखभाल, निजता जैसे अलग अलग क्षेत्रों में कैसे लागू होते हैं,
और ये भी देखेंगे कि कैसे ये पारंपरिक नैतिक सिद्धांतों को चुनौती देता है और रिश्तों पर आधारित एक नए नजरिए पर जोर देता है।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये रोबोट एथिक्स इतनी जरूरी क्यों है आज?
देखिए, जैसा हमने कहा, ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है। रोबोट आ चुके हैं, हमारे बीच हैं।
सही।
और ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी तकनीक वो अपने आप में न्यूट्रल या तटस्थ नहीं होती।
मतलब
उसे बनाने वालों के विचार, उनके मूल्य जाने अनजाने उसमें आ जाते हैं, और फिर वो तकनीक हमारे समाज को, हमारे सोचने के तरीके को, हमारे व्यवहार को बदलने लगती है।
अच्छा, और वो जो पुराने नियम थे समूह वाले, रोबोट इंसान को चोट नहीं पहुंचाएगा वगैरह,
हाँ वो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर असल दुनिया की जो उलझने हैं, जो जटिलताएं हैं, उनके लिए वो नाकाफी हैं।
जैसे
वही सेल्फ ड्राइविंग कार वाला उदाहरण सोचिए, अगर एक्सीडेंट को टाला नहीं जा सकता तो कार को क्या चुनना चाहिए, किसे बचाना चाहिए, राहगीर को या कार में बैठे इंसान को?
इसका तो कोई आसान जवाब नहीं है।
बिल्कुल, कोई एक सीधा नियम यहाँ काम नहीं कर सकता। हमें ज्यादा गहरी, ज्यादा लचीली नैतिक बहस की जरूरत है। नियमों की चेकलिस्ट से काम नहीं चलेगा।
और यहीं पर वो जिम्मेदारी के अंतर वाली बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के गैप।
हाँ, कोकिलबर्ग इस पर बहुत जोर देते हैं। ये आज की ऑटोमेटिक दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
इसे थोड़ा और समझाएंगे, ये अंतर क्या है?
मान लीजिए एक मेडिकल AI है जो बीमारी का गलत निदान करता है, या एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम शेयर बाजार में गड़बड़ी कर देता है। अब दोष किसका है? क्या उस प्रोग्रामर का जिसने कोड लिखा, उस डॉक्टर या ट्रेडर का जिसने सिस्टम पर भरोसा किया, उस कंपनी का जिसने उसे बनाया, या उस AI का ही?
समझ गया, हमारी जो जिम्मेदारी तय करने की पुरानी व्यवस्था है वो यहाँ आकर फेल हो जाती है। ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो खाली जगह है कि आखिर जिम्मेदार कौन, यही है जिम्मेदारी का अंतर।
बिल्कुल, और ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक और कानूनी पहेली है। हमें एजेंसी, मतलब कर्ता कौन है, और जवाबदेही, इन पर दोबारा सोचना होगा।
तो इसका हल क्या है? कोकिलबर्ग कुछ सुझाते हैं?
वो सार्थक मानव नियंत्रण यानी मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल की बात करते हैं।
सार्थक मानव नियंत्रण,
हाँ, मतलब ऐसी व्यवस्थाएं बनाना जहां जरूरी और खासकर गंभीर फैसलों पर, जैसे जीवन और मृत्यु से जुड़े फैसलों पर, इंसानों का नियंत्रण बना रहे, पूरी तरह से मशीन पर न छोड़ा जाए।
और जिम्मेदारी को शायद बांटना होगा।
हाँ, मानव रोबोट सिस्टम में जिम्मेदारी कैसे बांटी जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। ये मुश्किल है पर जरूरी है।
अगला बड़ा मुद्दा आपने प्राइवेसी का बताया था, निजता।
हाँ, और ये आजकल बहुत बड़ा होता जा रहा है। सोचिए, हमारे घरों में स्मार्ट स्पीकर है, शहरों में ड्रोन उड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर फेशियल रिकॉग्निशन है, अब देखभाल करने वाले रोबोट भी आ रहे हैं।
ये सब तो चलते फिरते सेंसर हैं।
बिल्कुल, ये लगातार बहुत बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी बातें, हमारी आदतें, हमारे चेहरे, हमारी लोकेशन, सब कुछ।
और खतरा क्या है?
खतरा साफ है, लगातार निगरानी, सर्वेलेंस। ये डेटा किसके पास जा रहा है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, सिर्फ विज्ञापन दिखाने के लिए, या फिर हमारे ऊपर किसी तरह का सामाजिक या राजनीतिक नियंत्रण रखने के लिए?
ये तो डराने वाली बात है।
हाँ, और ये सिर्फ प्राइवेसी बनाम सुरक्षा या प्राइवेसी बनाम सुविधा का मामला नहीं है। कोकिलबर्ग पूछते हैं कि जब हमें पता होता है कि हम पर लगातार नजर रखी जा रही है, तो हम किस तरह के इंसान बन जाते हैं?
मतलब
क्या हम खुलकर अपनी बात कह पाते हैं? क्या हम बिना डरे कुछ नया आजमा पाते हैं? हमारी आज़ादी, हमारे आपसी रिश्तों की गहराई, हमारी रचनात्मकता, इन सब के लिए एक हद तक निजता जरूरी है। लगातार निगरानी हमें बदल सकती है।
ये गहरा सवाल है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है, काम का भविष्य।
हाँ, क्या रोबोट हमारी नौकरियां ले लेंगे? ये सवाल हर तरफ है।
कोकिलबर्ग इस बारे में क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि ये सवाल थोड़ा ज्यादा सरल है, तस्वीर इससे ज्यादा जटिल है। हाँ, ऑटोमेशन से कुछ नौकरियां जाएंगी, शायद कुछ नई तरह की नौकरियां पैदा भी हों,
लेकिन आर्थिक असर तो होगा ही।
बिल्कुल, उत्पादकता बढ़ सकती है, लेकिन एक बड़ा खतरा है, बढ़ती असमानता का। जिनके पास टेक्नोलॉजी और रोबोट होंगे, वो शायद और अमीर हो जाएं और बाकी लोग पीछे छूट जाएं।
पर क्या ये सिर्फ आर्थिक मामला है?
नहीं, कोकिलबर्ग इसके दार्शनिक पहलू पर भी जोर देते हैं। हमारी जिंदगी में काम का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है? या इससे हमें पहचान, मकसद, इज्जत, समाज से जुड़ाव भी मिलता है?
तो अगर भविष्य में मान लीजिए ज्यादातर काम रोबोट ही करने लगे, तो हम इंसान क्या करेंगे?
हमारे जीवन का अर्थ कहाँ से आएगा? हमारी सेल्फ वर्थ का क्या होगा?
ये तो बहुत बुनियादी सवाल है।
हाँ, और इस पर कई तरह के समाधान सोचे जा रहे हैं, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, UBI, यानी सबको एक न्यूनतम आय देना,
लोगों को नई स्किल सिखाना, रीट्रेनिंग करना,
या पूरी अर्थव्यवस्था को ही नए सिरे से डिजाइन करना। पर कोकिलबर्ग का जोर इस बात पर है कि लक्ष्य ये होना चाहिए कि ऑटोमेशन से होने वाले फायदे समाज में सही ढंग से बंटें, ये सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो और सबसे जरूरी इंसानी गरिमा बनी रहे।
एक और बहुत ही गंभीर और चिंताजनक क्षेत्र है युद्ध में रोबोट्स का इस्तेमाल।
हाँ, खासकर घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली लॉज, जिन्हें लोग किलर रोबोट्स भी कहते हैं।
ये क्या है?
ये ऐसे हथियार हैं जो बिना किसी इंसानी दखल के खुद ही लक्ष्य को ढूंढ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उस पर निशाना साध सकते हैं और उसे खत्म कर सकते हैं।
पूरी तरह से ऑटोमेटिक।
हाँ, और यहीं से नैतिक सवाल खड़े होते हैं।
इनके पक्ष में भी कुछ तर्क दिए जाते होंगे?
हाँ, कहा जाता है कि ये ज्यादा सटीक हो सकते हैं, इनसे शायद आम नागरिकों को कम खतरा हो, हालांकि ये दावा बहुत विवादित है, और अपने सैनिकों की जान बच सकती है क्योंकि इन्हें खतरनाक मिशन पर नहीं भेजना पड़ेगा।
लेकिन विरोध में जो तर्क हैं वो ज्यादा गंभीर लगते हैं।
बहुत ज्यादा। पहला, फिर वही जिम्मेदारी का अंतर। अगर ये किलर रोबोट कोई गलती करता है, किसी गलत लक्ष्य को मार देता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? दूसरा, ये युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जैसे जिनेवा कन्वेंशन को चुनौती देता है। उन कानूनों में दुश्मन सैनिक और आम नागरिक में फर्क करना जरूरी है। हमला जरूरत के मुताबिक ही होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी। इन सब में मानवीय विवेक, समझ और सहानुभूति की जरूरत होती है। क्या मशीन यह कर सकती है?
शायद नहीं।
तीसरा और शायद सबसे बुनियादी सवाल, क्या जिंदगी और मौत का फैसला एक मशीन पर छोड़ देना नैतिक रूप से सही है? क्या इससे इंसानी जिंदगी का मूल्य कम नहीं हो जाता?
और एक डर ये भी है कि अगर मशीनें लड़ने लगेंगी तो शायद युद्ध शुरू करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि इंसानी जान का जोखिम कम लगेगा।
बिल्कुल, ये ऑटोमेटेड युद्ध के बढ़ने का एक बहुत बड़ा खतरा है। ये सवाल हमारी साझा इंसानियत से जुड़े हैं कि हम किस हद तक लड़ाई को मशीनों के हवाले करना चाहते हैं।
अब कुछ ऐसे क्षेत्रों की बात करते हैं जो शायद ज्यादा निजी लगते हैं, देखभाल, सेक्स और प्यार में रोबोट।
हाँ, सोशल रोबोट्स ये भी तेजी से आ रहे हैं। जैसे जापान में बुजुर्गों का अकेलापन दूर करने के लिए पारो नाम की एक रोबोटिक सील बहुत लोकप्रिय है।
अच्छा।
और सेक्स रोबोट्स भी हैं।
हाँ।
और यहाँ जो सबसे बड़ा नैतिक सवाल उठता है वो है प्रामाणिकता बनाम धोखा, ऑथेंटिसिटी वर्सेस डिसेप्शन।
मतलब?
क्या देखभाल या प्यार का सिर्फ दिखावा करना, उसका अनुकरण करना नैतिक रूप से सही है? क्या एक ऐसी मशीन से भावनात्मक रूप से जुड़ना जो असल में कुछ महसूस नहीं कर सकती, वो एक तरह का आत्मधोखा नहीं है?
मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक रोबोट को ही अपना साथी समझने लगे,
तो क्या ये ठीक है? क्या ये उनकी मदद कर रहा है या उन्हें एक भ्रम में रख रहा है? और क्या इससे असली इंसानी रिश्तों की कीमत कम हो जाती है?
और इसका एक खतरा ये भी तो हो सकता है कि हम इंसानों के बीच आपसी संपर्क और कम हो जाए अगर हमें रोबोट से आसान साथ मिलने लगे।
बिल्कुल। कहीं हमारे रिश्ते भी चीजों की तरह इस्तेमाल करने और फेंक देने वाले ना बन जाएं। कोकिलबग यहाँ फिर वही आईने वाली बात कहते हैं।
ये रोबोट हमारी अपनी जरूरतों को दिखाते हैं।
हाँ, हमारी अपनी जरूरतें, हमारी कमजोरियां और एक सच्चे सार्थक रिश्ते की हमारी अपनी परिभाषा क्या है, ये सब इन रोबोट्स के संदर्भ में उभर कर सामने आता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि असली मानवीय जुड़ाव, भावनाएं, शारीरिक स्पर्श कितने जरूरी हैं।
और फिर आता है वो बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल, क्या रोबोट को व्यक्ति, पर्सन माना जा सकता है? क्या उन्हें कोई नैतिक दर्जा या अधिकार मिलने चाहिए?
ये सवाल अक्सर उठता है, खासकर जब हम साइंस फिक्शन देखते हैं।
हाँ, तो पारंपरिक तौर पर व्यक्ति होने के क्या पैमाने माने जाते हैं? चेतना, सोचने की क्षमता, दर्द महसूस करना।
हाँ, चेतना, संवेदनशीलता, आत्म जागरूकता, और अगर इन पैमानों पर देखें तो आज की AI या रोबोट इनसे बहुत बहुत दूर है, उनमें ये सब नहीं है।
तो फिर उन्हें अधिकार देने का सवाल ही नहीं उठता।
देखिए, कोकिलबर्ग यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अलग रास्ता अपनाते हैं। वो इसे संबंध परक मोड़ कहते हैं।
संबंध परक मोड़, ये क्या है?
वो कहते हैं कि हमें इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि रोबोट अंदर से क्या है, क्या वो सोच सकता है, महसूस कर सकता है, ये शायद हम कभी जान भी ना पाए।
तो फिर किस पर फोकस करना चाहिए?
हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि हमारा उसके साथ संबंध कैसा है। हम इंसानों जैसे दिखने वाले या इंसानों जैसा व्यवहार करने वाले रोबोट के साथ कैसा बर्ताव करते हैं।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि हम उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो चीज हमारे खुद के नैतिक चरित्र को बनाती या बिगाड़ती है। अगर हम एक रोबोट पर चिल्लाते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो क्या ये हमें ज्यादा हिंसक या कम संवेदनशील नहीं बनाता?
ये तो सोचने वाली बात है। मतलब फोकस मशीन के अधिकारों से हटकर हम इंसानों के कर्तव्यों और हमारे नैतिक विकास पर आ गया।
बिल्कुल। सवाल ये नहीं कि रोबोट को अधिकार दें, बल्कि ये कि हमारा उनके प्रति क्या नैतिक कर्तव्य है और ये कर्तव्य हमारे खुद के भले के लिए क्यों जरूरी है। इसे नैतिक विचार मॉरल कंसिडरेशन की अवधारणा से भी जोड़ते हैं।
आखिर में बात आती है नैतिक डिजाइन की, यानी ऐसे रोबोट कैसे बनाएं जो नैतिक हों?
हाँ, ये एक बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए जो रोबोट बना रहे हैं। एक तरीका है मूल्य संवेदनशील डिजाइन, वैल्यू सेंसिटिव डिजाइन।
इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि रोबोट बनाते समय शुरू से ही नैतिक मूल्यों का ध्यान रखा जाए। सिर्फ ये ना सोचा जाए कि मशीन तकनीकी रूप से क्या क्या कर सकती है, बल्कि ये भी सोचा जाए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसके सामाजिक परिणाम क्या होंगे।
जैसे प्राइवेसी का ध्यान रखना या भेदभाव से बचने की कोशिश करना।
हाँ बिल्कुल, और ये भी सोचना कि क्या टॉप डाउन तरीका बेहतर है, यानी नियम बना देना, या बॉटम अप, यानी मशीन को अनुभव से सीखने देना। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं।
पर क्या सिर्फ तकनीक से नैतिकता आ सकती है?
कोकलबर्ग मानते हैं कि तकनीकी समाधानों की अपनी सीमाएं हैं, नैतिकता कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे बस डाउनलोड कर लिया जाए।
तो फिर ये क्या है?
ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है, जिसे हमें लगातार अपनी जिंदगी में, अपने फैसलों में, अपने रिश्तों में जीना पड़ता है, और रोबोट अब इस अभ्यास का, इस प्रैक्टिस का हिस्सा बन रहे हैं।
और इसमें सामाजिक संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है ना?
हाँ, सबसे जरूरी। ये रोबोट किस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक माहौल में आ रहे हैं? क्या वो मौजूदा ताकत के समीकरणों को और बिगाड़ेंगे? क्या वो असमानता को बढ़ाएंगे? क्या उनका नियंत्रण कुछ ही कंपनियों या सरकारों के हाथ में होगा?
इन सवालों पर तो व्यापक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए।
बिल्कुल, ये सिर्फ इंजीनियरों या दार्शनिकों का काम नहीं है, इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। ये एक लोकतांत्रिक मुद्दा है।
तो अगर हम कोकलबर्ग के काम से निकले मुख्य संदेशों को समेटें, तो पहला और सबसे अहम शायद यही है कि रोबोट एथिक्स असल में इंसानियत का आईना है।
हाँ, ये हमें अपने मूल्यों, अपनी प्राथमिकताओं पर सोचने को मजबूर करती है। हम कैसी तकनीक चुनते हैं, ये दिखाता है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं।
दूसरा बड़ा संदेश वो जिम्मेदारी का अंतर है। ये एक ऐसी चुनौती है जो बार बार सामने आती है और दिखाती है कि शायद हमारे पुराने नियम कानून अब काफी नहीं हैं।
हाँ, हमें जवाबदेही तय करने के नए तरीके खोजने होंगे, वरना ये अंतर बढ़ता जाएगा।
तीसरा वो संबंध परक बदलाव वाला विचार, ये बहुत शक्तिशाली है। नैतिकता सिर्फ अंदरूनी गुणों या नियमों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों में, हमारे व्यवहार में बसती है।
हम मशीनों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये अंततः हमें ही नैतिक या अनैतिक रूप से प्रभावित करता है। ये हमें ज्यादा मानवीय या कम मानवीय बना सकता है।
चौथा, तकनीक कभी तटस्थ नहीं होती, उसमें हमेशा उसे बनाने वालों के मूल्य, उनके इरादे, यहाँ तक कि उनके पूर्वाग्रह भी शामिल हो सकते हैं।
इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि तकनीक के विकास में, उसके नियमों में सबकी आवाज शामिल हो, एक लोकतांत्रिक बहस और नियंत्रण हो, हम सिर्फ निष्क्रिय उपभोक्ता ना बने।
और कोकलबर्ग सनसनीखेज भविष्यवाणियों से ज्यादा आज की समस्याओं पर ध्यान देने को कहते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि रोबोट विद्रोह या सुपर इंटेलिजेंस जैसी दूर की बातों से ज्यादा जरूरी है कि हम आज की समस्याओं जैसे एल्गोरिदम में भेदभाव, प्राइवेसी का हनन, नौकरियों पर असर, ड्रोन युद्ध, इन पर ध्यान दें और इनका हल निकालें।
उनके काम में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में रह जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे उनका ये कहना कि रोबोट के बारे में नैतिक सवाल असल में हमारे अपने बारे में सवाल है। रोबोट एथिक्स एक आईना है, ये बार बार याद दिलाता है कि फोकस हम पर है।
और वो जिम्मेदारी वाली बात, जब एक स्वचालित प्रणाली विफल होती है तो जिम्मेदारी का अंतर पैदा होता है, दोष किसी एक इंसान पर मढ़ना मुश्किल होता है, ये उस व्यवहारिक उलझन को साफ दिखाता है।
और वो संबंध वाला नजरिया, हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम रोबोट से कैसे संबंध रखते हैं, न कि वे क्या हैं। हमारी बातचीत हमारे नैतिक चरित्र को आकार देती है।
ये हमें अपने व्यवहार के प्रति सचेत करता है।
एक और विचार जो मुझे महत्वपूर्ण लगा, नैतिकता कोई प्रोग्राम नहीं जिसे डाउनलोड किया जाए, बल्कि एक अभ्यास है जिसे जिया जाता है, और रोबोट इस अभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं।
हाँ, ये तकनीकी समाधानों की सीमाओं को दिखाता है और नैतिकता को एक लगातार चलने वाली मानवीय प्रक्रिया के रूप में देखता है।
और अंत में, रोबोट एथिक्स का भविष्य रोबोट को अधिक मानवीय बनाने में नहीं, बल्कि मानव रोबोट संबंधों को अधिक नैतिक बनाने में है।
बिल्कुल, लक्ष्य कृत्रिम चेतना बनाना नहीं, बल्कि हमारे और इन मशीनों के बीच के रिश्ते को नैतिक और जिम्मेदार बनाना है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? कोई आम इंसान इन विचारों का क्या करे?
देखिए, अगर हम उपभोक्ता हैं तो अगली बार कोई स्मार्ट डिवाइस खरीदते समय या कोई ऐप इस्तेमाल करते समय थोड़ा सोचें। क्या सोचें?
ये मुझसे क्या डेटा ले रहा है? इसका इस्तेमाल कैसे होगा? क्या ये मेरी आदतों को बदल रहा है? क्या ये मेरे मूल्यों से मेल खाता है? थोड़ा जागरूक बने।
और जो लोग तकनीक बनाते हैं, इंजीनियर या डिजाइनर,
उनके लिए संदेश है, सिर्फ तकनीकी खूबियों से आगे सोचो। सोचो कि इसका समाज पर क्या असर होगा, क्या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, क्या इसमें अनजाने में कोई भेदभाव आ सकता है। नैतिकता को डिजाइन प्रक्रिया का हिस्सा बनाओ, बाद में जोड़ने की चीज नहीं।
और जो लोग नीतियां बनाते हैं, सरकारें,
उनके लिए तो ये बहुत बड़ा काम है। सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए जिम्मेदारी के नियम बनाने होंगे, किलर रोबोट्स जैसे हथियारों पर रोक लगाने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने होंगे, हमारे डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाने होंगे, निरीक्षण, पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था बनानी होगी।
और हम सब आम नागरिक,
सबसे जरूरी भूमिका शायद हमारी ही है। हमें इस बारे में जानकारी रखनी चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए। तकनीक को सिर्फ चुपचाप स्वीकार न करें, उस पर सवाल उठाएं। ऑटोमेशन, प्राइवेसी, एआई के असर जैसे मुद्दों पर हमारी राय मायने रखती है। ये सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि गहरे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं। हमें निष्क्रिय उपभोक्ता से सक्रिय नागरिक बनना होगा।
तो कुल मिलाकर कोकिलबर्ग के काम से जो सबसे अहम सबक मिलता है वो शायद ये है कि हमारा तकनीकी भविष्य पहले से तय नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है।
हाँ, हमारे पास विकल्प हैं। हम चुन सकते हैं कि हम कैसी तकनीक चाहते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। जरूरी ये है कि नई खोजें करते समय हम नैतिक सवालों को नजरअंदाज न करें बल्कि उन्हें अपना रास्ता दिखाने दें।
और ये भी कि सबसे गहरी चुनौतियां शायद तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक हैं।
बिल्कुल। जिम्मेदारी कैसे तय हो, न्याय कैसे मिले, इंसानी गरिमा कैसे बनी रहे, इन सवालों के जवाब किसी एक लैब में या किसी एक एल्गोरिदम में नहीं मिलेंगे।
इसके लिए क्या चाहिए?
इसके लिए लगातार बातचीत चाहिए, अलग अलग नजरियों का सम्मान चाहिए और विभिन्न लोग, इंजीनियर, दार्शनिक, समाजशास्त्री, कानूनविद, कलाकार, पॉलिसी मेकर, आम नागरिक, सबके बीच सहयोग चाहिए।
अंत में शायद सबसे जरूरी बात यह है कि तकनीक के साथ हमारा रिश्ता खुद हमारी इंसानियत को परिभाषित करता है।
हाँ, हम अपनी बनाई इन शक्तिशाली मशीनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये अंततः तय करेगा कि हम भविष्य में कैसे इंसान बनेंगे। हमें एक ऐसे नैतिक मानव रोबोट सह अस्तित्व की ओर बढ़ना है जो तकनीक का इस्तेमाल इंसानी जिंदगी को सच में बेहतर बनाने, उसे समृद्ध करने के लिए करे, ना कि उसे कमतर करने या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए।
जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकें।
जरूर।
सोचने वाला सवाल है।
सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।